सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं येषु पञ्च नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढ़मं हवै मंगलं पढ़मं हवै मंगलं। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, प्रश्न जितने भी बचे हैं वो पूर्ण कर लेते।
महाराज जी, कल में से अनर्घ्य पद प्राप्त है वो विषय रह गए हैं। कल का जो विषय था उसमें का वो अनर्घ्य पद प्राप्त आय वो
अनर्घ्य पद प्राप्त आय, हाँ एक ही मंत्र बचा था। अर्घ्य शब्द का अर्थ होता है मूल्य, मूल्यवान। अर्घ्य यानी मूल्यवान, जिसको हम चढ़ाते हैं वो मूल्यवान है, और उससे भी बढ़कर के मूल्यवान है अनर्घ्य पद। उसको हम अमूल्य भी कहते हैं, और इन आठ द्रव्यों के मूल्य वस्तुओं से श्रेष्ठ होने के कारण और परमार्थभूत होने के कारण वो किसी भौतिक वस्तु से खरीदा नहीं जा सकता, धन आदि से खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए मूल्य से रहित है, इसलिए अमूल्य है। अनर्घ्य पद का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य से खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए अमूल्य है। हम अर्घ्य चढ़ाते समय ऐसी भावना भाते हैं, हे भगवान, दुनिया में जितने वस्तु हैं सबका मूल्य है, भौतिक वस्तुओं का मूल्य तो होता ही है, और इन मूल्य वस्तुओं को मैं अर्पित करके अमूल्य वस्तु की इच्छा करता हूँ। जिनका मूल्य होता है उन मूल्य वस्तुओं को मैंने बार बार जीवन में ग्रहण किया, ये मुझे ज्ञात ही नहीं था कि इन मूल्य वस्तुओं से भी कोई अमूल्य वस्तु और है, परंतु आपके चरण सानिध्य से, आपके उपदेश सुनने से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि इन मूल्य वस्तुओं से भी परे एक अमूल्य वस्तु अनर्घ्य पद होता है। उस अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए हे भगवान, मैं मूल्य वस्तुओं का मोह त्यागता हूँ और अमूल्य वस्तु से अपना संबंध जोड़ देता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए मूल्य वस्तु को तो चढ़ाया जाता है, और अमूल्य वस्तु की भावना की जाती है कि वो अमूल्य वस्तु मिले और इस मूल्य वस्तु का आपके चरणों में अर्पण हो, और ऐसे अर्पण करते करते एक दिन ऐसा समय आ जाए कि दसों परिग्रह का मैं बाह्य परिग्रहों का जो मूल्य वस्तु है उनको अर्पण करके, सब कुछ अर्पण करके, आपने जैसा सब कुछ पा लिया है अमूल्य वस्तु को, वैसा मैं भी पाऊँ, इस प्रकार समस्त द्रव्यों को एकत्रित करके अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा, इस प्रकार अर्घ्य मंत्र में अपन आठों द्रव्यों को संग्रहित करके अर्पण करते हैं। आठ द्रव्यों में सभी द्रव्य खरीद करके लाते हैं। कौन सा द्रव्य फोकट में आता है? जल ही महंगा है। ऊपर से पकड़ते हैं तो अलग बात है, अगर बारिश नहीं हुआ तो उसको भी खरीदना पड़ता है, कभी न कभी खरीदना पड़ता है, और नल का पानी के लिए तो बिल भरते ही हैं, क्या खरीद नहीं रहे हैं? हर वस्तु खरीदते हैं, जल को भी खरीदा जाता है। इसलिए दुनिया के प्रत्येक वस्तु का मूल्य तो है, लेकिन हे भगवान, आपने जो पाया है अनर्घ्य पद को पाया है, मोक्ष पद है, अनर्घ्य यानि मूल्य से रहित, अनिषेधवाचक है, अन्न अर्घ्य अनर्घ्य अननिषेधवाचक है, यानि आपके पास जो आत्मनिधि मोक्ष तत्व है उसको आपने किसी भी मूल्य वस्तु को दे करके नहीं खरीदा, आपने त्याग तपस्या के बल पर आत्मा को स्वतंत्र करके कर्मों से, शरीर से, रागादि भावों से, पर भावों से, अज्ञान के भावों से परे होकर आपने अनर्घ्य पद पाया, वैसा ही मुझे भी करना चाहिए। परंतु मैं द्रव्य पूजन करता करता कभी मोक्ष नहीं पाऊंगा, लेकिन भावना है विशुद्धि को बढ़ाने के लिए हमने केवल इन द्रव्यों को निमित्त बनाया है, ऐसे ही इन द्रव्यों, क्योंकि मैं परिग्रह से सहित हूँ, इन द्रव्यों के अर्पण से ही त्याग के भाव जगेंगे, मूल्य को मूल्य समझूंगा और अमूल्य को अमूल्य समझूंगा, तभी समझ पाऊंगा जब चढ़ाऊंगा, चढ़ा चढ़ा करके ही सब कुछ चढ़ाना है। एक दिन आठ द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते दसों परिग्रह को भगवान के चरणों में चढ़ा करके हम दीक्षित नहीं होंगे तो अनर्घ्य पद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ऐसा अनर्घ्य पद हे भगवान, दस परिग्रहों को त्यागने से प्राप्त होता है, ये मुझे ज्ञात है, लेकिन ऐसा ही थोड़ा थोड़ा मैं पूजन करते समय द्रव्य पूजन के माध्यम से इन वस्तुओं को चढ़ाते हुए भावना भाकर विशुद्धि को बढ़ा करके, भावना भाते भाते विशुद्धि के बल पर एक दिन ऐसी विशुद्धि को जुटा लूँगा जिस विशुद्धि के माध्यम से संपूर्ण वैराग्य की प्राप्ति मुझे होगी, और दसों परिग्रह को अर्घ्य के रूप में चढ़ा करके मैं दीक्षित बनूंगा। तो यह क्या अर्घ्य पंचम गुणस्थानुवर्ती को और चतुर्थ गुणस्थानुवर्ती को चढ़ाया जा सकता है? जिनके पास अर्घ्य स्वयं है उसकी क्या पूजा? जो मूल्य वस्तु जिसके पास हो उनसे क्या अनर्घ्य पद की कामना करेंगे? जिनके पास मूल्य पदार्थ कुछ भी नहीं उनसे हम अनर्घ्य पद की प्राप्ति भी कर सकते हैं, जैसे दिगंबर मुनि, आचार्य परमिष्टि, साधु परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, अरहंत परमिष्टि और सिद्ध परमिष्टि, इनको हम अर्घ्य भी चढ़ा सकते हैं। मुनि को क्यों अर्घ्य चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं, हे मुनिवर, हे गुरुवर, आपने अनर्घ्य पद के प्राप्ति के हेतुभूत साक्षात कारणीभूत सकल संयम को आपने प्राप्त किया है, इसलिए हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब छुल्लक ऐलक आरिका तो नहीं चढ़ा सकेंगे, अर्घ्य वगैरह को क्या चढ़ाएंगे? नहीं, वस्त्र परिग्रह को छोड़कर बाकी सब परिग्रह त्याग हो गया है तो उनके लिए भी द्रव्य पूजा, आठ द्रव्यों से पूजा नहीं है। और ये आठ द्रव्य जिनके पास हैं वे आठ द्रव्यों से पूजा करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आठ द्रव्य हमारे पास नहीं रहते, ऐसे संदर्भ में वह द्रव्य वाला भी भाव पूजा करता है। भाव पूजा ही करना चाहिए, इतना विकल्प नहीं करना कि हमने तो पूजन का नियम ले लिया है तो यात्रा में कैसे करना और रेलगाड़ी में कैसे करना और कहीं गए तो कैसे करना, ये विकल्प छोड़ देना चाहिए। द्रव्य पूजन इतना इम्पॉर्टेंट थोड़ी है, भाव पूजन ही सर्वश्रेष्ठ है। भाव पूजन तो करो ही, भाव पूजन क्या है, जो श्लोकों में और मंत्रों में अर्थ होता है उस ओर ध्यान दे करके भगवान को भक्ति करके नमन करना भाव पूजा है। दूसरी बात, द्रव्य पूजा और भाव पूजा का जो अर्थ है, नाना ग्रंथों में अनेक प्रकार की बहुत बड़ी चर्चा है। द्रव्य पूजन का अर्थ अपन तो समझते हैं कि आठ द्रव्यों को जुटा करके पूजन करना, परंतु किन्हीं ग्रंथों में ऐसा भी कहा है, द्रव्य पूजन का अर्थ चेतन द्रव्य की पूजा करना ही द्रव्य पूजा। सिद्ध भगवान चेतन द्रव्य है, अरहंत भगवान चेतन द्रव्य है, पंच परमेष्टी सभी चेतन द्रव्य है, उन चेतन द्रव्यों की पूजा का नाम ही द्रव्य पूजा है, ये भी कहा है अनेक ग्रंथों में। भाव पूजा करना संभव ही नहीं, आपको सही पूछा जाए तो पूजन नहीं नहीं हम क्या कह रहे हैं ध्यान दो, अभी हमने बताया द्रव्य पूजन का दूसरा अर्थ क्या बताया, चेतन द्रव्य की पूजा को ही द्रव्य पूजा कहते हैं। द्रव्य है क्या नहीं, वो उसकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं द्रव्य पूजा है वो, किसकी पूजा कर रहे हैं, द्रव्य की पूजा कर रहे हैं, किस द्रव्य की, चेतन द्रव्य की। तो केवल भाव पूजा तो आप कर ही नहीं सकते, भाव पूजा यदि आप करेंगे तो उस समय कर पाएंगे जब आप शुद्धोपयोग में रहते हैं, शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, उसको भी यदि व्यवहार की दृष्टिकोण से देख लेते हैं तो शुद्धात्मा की आराधना भी चेतन द्रव्य की आदान आराधना है, तो वह भी द्रव्य पूजा है। केवल भाव पूजा हम कब कर सकेंगे, जब तक हम आराधक हैं, आराधक अवस्था हमारी 12वें 13वें 14वें गुणस्थान तक आराधक अवस्था है, अपनी आत्मा की आराधना करके ही हम सिद्ध भगवान बनते हैं, आराधक अवस्था वहां तक है। अरिहंत भगवान भी चेतन द्रव्य की आराधना कर रहे हैं, किसी पंच परमेष्टि में से किसी भी परमेष्टि की वंदना पूजा या नमस्कार वगैरह अरहंत भगवान करते हैं, नहीं करते, पर आत्म आराधना तो अवश्य करते रहते हैं। केवल ज्ञानोपयोग में रममान रहते हैं अरहंत भगवान, वो अपने उपयोग का भोक्ता, केवल ज्ञान अपयोग अपने उपयोग के द्वारा अपने में रहता है, अपने शुद्ध ज्ञानोपयोग को शुद्ध अनंत द्रव्य गुण पर्यायों का भोक्ता होना ही आराधक अवस्था है। और यह आराधक अवस्था तब तक रहती है जब तक हमें गुणस्थानों से मुक्ति नहीं मिलती। सिद्ध भगवान आराध्य अवस्था में रहते हैं और बाकी पंच परमेष्टि आराधक अवस्था में रहते हैं। सिद्ध भगवान ही केवल सिर्फ आराधक हैं, न वो भाव पूजक हैं न द्रव्य पूजक, पूजक नहीं है, आराध्य अवस्था केवल सिद्ध भगवान में ही है। अब ये सब विचार करने पर कैसा लगता है, देखो आठ द्रव्य कहाँ और वो अरहंत परमेष्टि की आराधना आराध्य अवस्था कहाँ, वहाँ तक द्रव्य पूजन है वस्तुतः देखा जाए तो। ये द्रव्य तो द्रव्य जड़ द्रव्य है, चेतन द्रव्य में रहने वाला जो ज्ञानोपयोग है, उस ज्ञानोपयोग में विवेक यदि है तो वह भाव पूजा भी कर सकता है और द्रव्य पूजा भी कर सकता है। वह उपयोग अपने द्वारा अपने को समझकर अपनी ही यदि आराधना करता है तो वह द्रव्य पूजा भी है और भाव पूजा भी है। वह ज्ञानोपयोग चेतन द्रव्य है, चेतन द्रव्य का गुण है वो, और गुण की वह पर्याय भी है। तो उसी पर्याय के माध्यम से उस गुण की शक्ति के द्वारा उसी शुद्ध द्रव्य की हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो द्रव्य की आराधना ही द्रव्य पूजा, और उसमें जो हमारा ज्ञानोपयोग लगा हुआ है वह भाव पूजा। उसका जो चिंतन मनन कर रहा है, हे उपादेय का ज्ञान है और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के कर्मों के निर्जरा करने में लगा हुआ है, वह वस्तुतः भाव पूजा है। भाव पूजा मिथ्या दृष्टि जीव नहीं कर सकता, क्योंकि परमार्थ से वह दूर रहता है। आत्म तत्व को, शुद्धात्म तत्व को, या भगवान के समान मैं भी शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से न भगवान की पूजा करता है न आत्मा की पूजा करता है। कौन सा जीव? पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक का जीव अशुभोपयोगी, वह केवल द्रव्यों को लेकर के पूजा करता है और भगवान के आत्म द्रव्य की भी पूजा करता है। लेकिन भगवान के आत्म द्रव्य जैसे मुझे भी शुद्ध द्रव्य बनना है, इस उपादेय बुद्धि से अशुभोपयोगी पूजा नहीं करता। तो अशुभोपयोगी के द्वारा जो पूजा कार्य होता है वो केवल द्रव्य पूजा ही होता है, भाव पूजा नहीं है। चारित्र से च्युत हुआ तो केवल द्रव्य चारित्र की आराधना करता है, सम्यक्त्व से च्युत हुआ तो केवल द्रव्य सम्यक्त्व की आराधना करता है, ज्ञान से च्युत हुआ, भाव ज्ञान से च्युत हुआ तो केवल द्रव्य ज्ञान की ही आराधना करता है। उसके भाव नामक कोई चीज रहती ही नहीं है, भाव रहित तो होता है। परमार्थ मार्ग चौथे गुणस्थान से ही शुरू होगा। उपादेय बुद्धि सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में जब जागृत होती है उपादेय बुद्धि, उस समय से जीव भाव की कोटि में आता है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव भाव पूजा भी करता है और द्रव्य पूजा भी। आगे के सभी गुणस्थान, चौदह गुणस्थान तक के सभी जीव द्रव्य पूजन भाव पूजन करते हैं। और गहरा गहरा सोचो तो बहुत है। सिद्ध भगवान ही किसी की पूजा नहीं करते, आराधक अवस्था नहीं है। जब तक हम गुणस्थान में रहते हैं आराधक अवस्था समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्ध पर्याय को पाने के लिए ही कुछ न कुछ करना पड़ रहा है। उस पर्याय की प्राप्ति के लिए हम जो कार्य करते हैं वो हमारी आराधना है और हम आराधक हैं, और आराध्य वस्तु तो हमारी शुद्धात्मा है। चौदहवें गुणस्थान में आराध्य वस्तु तो शुद्धात्मा है, वे चौदहवें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान सिद्ध भगवान की पूजा करेंगे क्या? भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे? परद्रव्य की आराधना वहां नहीं है, चौदहवें में नहीं, तेरहवें में नहीं, परद्रव्य की आराधना नहीं है। स्वद्रव्य में ही रममान है आत्मा। शुद्धोपयोग में भी परद्रव्य की आराधना नहीं है, शुभोपयोग के साथ ही परद्रव्य की आराधना है, शुभोपयोग के साथ। तो शुभोपयोग पहले से सातवीं तक है। तो चौथे गुणस्थान वर्ती पंच परमिष्टि की भी आराधना करता है और स्वयं के आत्मा में रहने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान सहित आत्मा की भी आराधना कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, उनके दोषों से बच रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, आत्म तत्व के प्रति रुचि है, कर्म निर्जरा करने का प्रयास कर रहा है। ये सारे कार्य आराधक अवस्था के, आराधना के कार्य हैं, ये आराधना के कार्य हैं। कर्म निर्जरा करना आराधना है, मंदिर जाना आराधना है, आराधना की ये क्रिया है। जो आराधना करता है वह आराधक है, जो आराधना करता है वही आराधक है, और जो आराधना करता ही नहीं वो आराधक भी नहीं।
महाराज जी एक उपप्रश्न है।
हाँ।
कि अभव्य आत्मा और मिथ्यात्व आत्मा इसमें क्या फर्क है फिर?
भव्य आत्मा,
अभव्य, अभव्य आत्मा और मिथ्यात्व आत्मा।
देखो, भव्य और अभव्य दो प्रकार के जीव हैं। अभव्य जीव तो सदा ही मिथ्या दृष्टि ही रहता है, उसका मिथ्यात्व अनादि अनंत पर्याय है। अनादिकाल से मिथ्यात्व में था और अनंत काल तक मिथ्यात्व में रहेगा। मोक्ष जाने की योग्यता उसमें उत्पन्न ही नहीं हो सकती, उस योग्यता की उत्पत्ति ही नहीं है तो मोक्ष भी नहीं जाएगा। वो योग्यता क्या है? तो सम्यक दर्शन। अभव जीव को अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन अभव्य को होता ही नहीं, इसलिए अभव्य है। और भव्य जीव को हो सकता है, और जब तक नहीं होगा तब तक मिथ्या दृष्टि है। अभव्य तो सदा मिथ्या दृष्टि है, भव्य जीव अनादि शांत काल के लिए मिथ्या दृष्टि रहता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद फिर वो सम्यक दृष्टि बनता है, तो वह सम्यक तो पहला उपशम सम्यक होता है, क्षोपशम सम्यक तो होता है, फिर क्षायिक होता है। इसमें से दो सम्यक तो सादी शांत हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट भी होते हैं, और क्षायिक सम्यक तो एक बार उत्पन्न होने के बाद अनंत काल तक नाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसा भव्य जीव मिथ्या दृष्टि भी रहता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है, इसलिए योग्यता होने के कारण से उसको भव्य कहा है। भव्य यानी योग्यता वाला और अभव्य यानी योग्यता रहित वाला।
महाराज जी और एक
वो नैसर्गिक स्वभाव है भव्य अभव्य, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ,
कि भव्य भी आत्मा है और अभव्य भी आत्मा है।
आत्मा है दोनों,
और आत्मा में सब लक्षण मौजूद है, तो फिर उसको ये क्यों भाव नहीं आते कि मैं परमात्मा बनूं? अभव्य जीव को भव्य बनने की इच्छा क्यों नहीं होती?
ऐसी इच्छा हो जाए तो वो भव्य कहलाएगा, इसलिए नहीं होती। अभव्य किसको कहा है? भगवान ने जो जिस द्रव्य की परिस्थिति को देख करके, अवस्था को देख करके, उसके निसर्ग नियमों को देख करके, उसकी परिणति को देख करके जो कहा है, उपदेश दिया है, एक को अभव्य कहा और एक को भव्य कहा। अगर अभव्य जीव में इच्छा होने की योग्यता होती तो उसको भी भव्य कहते, अभव्य कोई जीव होता ही न था। पर क्यों नहीं होती इच्छा मोक्ष जाने की या सम्यक दर्शन प्राप्त करने की? ऐसी इच्छा क्यों नहीं होती, ये अपना प्रश्न हो सकता है, पर अभव्य को ये भी प्रश्न नहीं होता कि हमको क्यों नहीं इच्छा होती, ये उसको प्रश्न नहीं होता, हमको होता है, क्योंकि हमको उसकी भी चिंता है और अपनी भी चिंता है ना, पन बड़े दयालु हैं। हाँ, नहीं देखो, हाँ बिल्कुल ठीक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहले के चार लब्धि देखो, जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पांच लब्धि प्राप्त करना आवश्यक कहा है, परंतु भगवान ने ये कहा है चाहे भव्य जीव हो चाहे अभव्य जीव हो, पांच लब्धियों में से चार लब्धि को तो दोनों प्राप्त करते हैं, और अंतिम पांचवी जो लब्धि है वो केवल भव्य जीव को ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये विचारणीय बात हो जाता है, भव्य जीव को पांचवी लब्धि ही उत्पन्न हो रही है, तो इससे सिद्ध होता है चार लब्धियों तक जो विशुद्धि है आत्मा की, वो विशुद्धि अशुभोपयोग के साथ और कामना के साथ परमार्थ को ध्येय में रखे बिना भी, परमार्थ की रुचि रखे बिना भी चार लब्धियाँ प्रकट हो सकती हैं, तो ये विशुद्धि के बल पर प्रकट हो सकती है। परंतु पांचवी लब्धि में जो जाएगा वह कामना को त्यागे बिना परमार्थ भौतिक कामना त्याग कर परमार्थ भावना को दृष्टि में रखे बिना ध्येय बनाए बिना वह पांचवी लब्धि को उपलब्ध हो ही नहीं सकता। हाँ अगर भव्य हो तो ख्यातिला पूजा अगर आता है तो पांचवी लब्धि नहीं होगी, पांचवी लब्धि भी नहीं होगी। ख्यातिला पूजा, हाँ बिल्कुल ख्यातिला पूजा में अटकता है वो। हाँ ख्याति लाभ पूजा के जैसे ही परिणाम उदय में आएंगे तो देखो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार। अतिक्रम अतिचार तब तो ठीक है, गुणस्थान गिरने वाला नहीं, परंतु अनाचार के रूप में ढल गया तो अनाचार के काल में जिस गुणस्थान भी ऊपर के गुणस्थान में वह रहता है चौथे पांचवें छठे सप्तम तक, वह अनाचार में अगर पहुंच जाता है तो अनाचार पहुंचने के प्रथम क्षण में अनंतानुबंधी का उदय हो करके उनको नीचे ले जाता है, अपने अपने मायके में ले जाता है उसको। तुम अनादिकाल से यहीं थे, यहीं रहो, तुम वहां ऊपर नहीं रह सकते। सादी सम्यक दृष्टि था ना, सम्यक दृष्टि तो है ही, वो सादी है। अनादि सम्यक दृष्टि तो कोई होता नहीं, सादी सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दर्शन से जैसे शादी हो गई तो अपना घर छोड़ करके चला गया था। अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं तुमको वहां रहना नहीं होता है तो यहीं आ जाओ। हाँ मायके आते हैं, वहां झगड़ा करके मायके आते हैं। और मायके आते ही हमको ये माइक से कहना पड़ रहा है।
नमोस्तु महाराज जी। हाँ। इधर पीछे में।
हाँ।
जैसा जीव मिथ्या दृष्टि बनकर जैसा जन्म लेता है तो उसके बाद वो सम्यक तो धारण कर सकता है।
हाँ।
तो ये चारों गोतव्यों में भी यही परिस्थिति उसकी रह सकती है क्या, कि जैसा मिथ्या जैसा नरक में अगर मिथ्या दृष्टि बनकर अगर जन्मा हो तो वहां उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है क्या?
देखो ये पहली बात ध्यान में रखो, सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को हो सकता है, होता ही है, ऐसा नियम नहीं। चारों गति में अनेक जीव हैं, कुछ जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते भी और नहीं भी करते, सभी सम्यक दृष्टि रहते हैं या सभी टोटल मिथ्या दृष्टि रहते हैं, ऐसा कोई एक भी गति नहीं है। प्रत्येक गति में सम्यक दृष्टि जीव कम हैं, मिथ्या दृष्टि जीव अधिक हैं, सम्यक दृष्टि जीव कम हैं, मिथ्या दृष्टि जीव अधिक हैं, चारों गति में यही परिस्थिति है। अब सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है तो इसका नियम है, पांच इंद्री वाला जीव होना, पहले तो भव्य होना चाहिए, अभव जीव को तो होगा ही नहीं, टोटल निषेध है। क्यों? क्योंकि परमार्थ में रुचि, परमार्थ में दृष्टि उसकी जाती नहीं, बनती नहीं, और उपदेश देने के बाद भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी भौतिक इच्छा जाती नहीं है और परमार्थ दृष्टि बनती नहीं है, वो उसका नैसर्गिक नियम है, स्वभाव है, नेचर, नेचर को बदला नहीं जा सकता। कुत्ते की पूंछ को पुंगरी में रखो 6 महीने, सीधी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? हम पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न ही है ये, हमारा प्रश्न है, जैसा आपका प्रश्न था हमारा। कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं हो पाई? उसका उत्तर वही है कि नहीं? स्वभाव, निसर्ग, निसर्ग को हम बदल नहीं सकते। वैसे ही आत्मा है तो आत्मा के भी दो जातियां हैं, जीव हैं तो जीवों के भी दो जातियां हैं, अभवी जाति और भवी जाति। अभवी जाति में वो योग्यता ही नहीं है कि परमार्थ में रुचि जगा सके अपन, उसको योग्यता ही नहीं होती, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। अब भवी जीव जो है, अब ये समझो कि इस संसार में जो दो प्रकार की जातियां हैं, इसमें अधिक कौन है? अभव्य जीव अधिक हैं क्या भव्य जीव अधिक हैं? तो भव्य जीव ही अधिक हैं। भव्य जीव अगर कम होते तो संसार खाली हो जाता आज तक। भव्य जीव अधिक हैं और अभव्य जीव कम हैं। अभव्य जीव तो सतत संसार में ही रहने वाले हैं, और भव्य जीवों में भी चार प्रकार की जाति है। संख्यात काल से मोक्ष जाने वाले भव्य जीव, असंख्यात काल से मोक्ष जाने वाले भव्य जीव, अनंत काल से मोक्ष जाने वाले भव्य जीव, और अनंतानंत काल तक भी, अनंतानंत काल व्यतीत होने पर भी नहीं जाने वाला भी एक भव्य जीव है, उसको दूरानुदूर भव्य ऐसा भगवान ने नामकरण किया है। दूरानुदूर भव्य, अभव्य के समान जो सतत संसार में ही रहेगा, ऐसा भी एक भव्य जीव है। आप पूछो कि भव्यत्व शक्ति है, निसर्ग से इसको चेंज होने की शक्ति है, नैसर्गिक स्वभाव विद्यमान होते हुए भी उसमें क्या कमी? पूछो
क्या कमी
उसमें, क्या कमी, क्या कमी? तो भगवान कहते हैं उसको निमित्त न मिलने से कभी संसार से मुक्त ही नहीं होगा। ये निसर्ग नियम है कि उसको निमित्त ही नहीं मिलेगा। योग्यता है, पर उस योग्यता को प्रकट करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए दो निमित्त चाहिए पड़ते, एक उपादान निमित्त और एक बाह्य निमित्त। बाह्य निमित्त जैसे कि भगवान का उपदेश सुन लिया, गुरुओं का उपदेश सुन लिया, जिनवाणी पढ़ लिया, जाति स्मरण हुआ, धर्म का स्वरूप समझ में आ गया, नरक में गति में है तो वेदना उसके लिए कारण है, देव गति में है तो देवों की रिद्धियों को आपस में तुलना करते हैं और वो तुलना करके ये धर्म का प्रभाव है और ये अधर्म का प्रभाव है ऐसा समझ करके धर्म के प्रति श्रद्धा जाग उठती है। अलग अलग गति में अलग अलग बाह्य निमित्त है। ये उपदेश भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त बन सकता है। तो ऐसे बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। अपना उपादान भी एक निमित्त है। उपादान निमित्त क्या है? तो पांच लब्धि चाहिए, ये अंतरंग उपादान है। और ये पांच लब्धि पुरुषार्थ पूर्वक हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। हाँ, बाह्य लब्धि है। हाँ, बाह्य लब्धि है, मन गुरु बाह्य लब्धि है, उपदेश बाह्य निमित्त है, परंतु अंतरंग उपादान निमित्त उस उपदेश को ग्रहण करने की जो शक्ति है, देशना लब्धि को जो ग्रहण करने की शक्ति है, वो उपादान है। तो बहिरंग में गुरु मिल गए और गुरु के उपदेश मिलने पर भी अगर उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति ना हो तो देशना लब्धि व्यर्थ है। ग्रहण धारण की शक्ति दोनों होना जरूरी। हाँ, ये बाहर का ज्ञान है, ये द्रव्य ज्ञान है, द्रव्य श्रुतक ज्ञान और द्रव्य द्वादशांग शब्दात्मक द्रव्य अक्षर ज्ञान, 11 अंग और 10 पूर्व तक जाता है। हाँ, 11 अंग और नहीं 10 पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व प्राप्त होता है उसको, विद्यानुवाद। हाँ, भिन्न दश पूर्वी, अभवी हो करके भी प्राप्त कर सकता है, अभवी को भी प्राप्त हो सकता है इतना ज्ञान 11 अंग और 10 पूर्व का। और द्रव्यलिंग तो रहता ही पूरा, मतलब सम्यक तो द्रव्य, यदि मुनिवेश धारण किया है तो वो भी द्रव्य, ज्ञान भी है वो भी द्रव्य, सब द्रव्य ही द्रव्य। हाँ, नव ग्रेविक तक जा सकता है अगर वह द्रव्यलिंग को धारण करेगा और द्रव्यलिंग के साथ त्याग तपस्या करेगा और शुक्ल ध्यान शुक्ल लेशा के साथ मरण करेगा तो वह नव ग्रेविक तक जा सकता है। अत्यंत मंद कषाय अनंत अनुबंधी का उदय रहता है, 25 सारी कषायों का उदय प्रथम गुणस्थान में है, पर अनंत अनुबंधी को इतना मंद करता है कि शुक्लेशा बनती है। इतने होने शुक्लेशा के द्वारा भी करण लब्धि नहीं होती, क्योंकि कामना नहीं छूटती, कामना नहीं छूटती, ख्याति लाभ पूजा नहीं छूटती। हाँ, ख्याति लाभ पूजा ये सभी जो है ना डेंजर है, इसके लिए कभी भी धर्म करने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। कोई भी धर्म का कार्य करो, दान करो, त्याग करो, तपस्या करो, संयम धारण करो, ख्याति के लिए मत करो, स्वार्थवश मत करो, प्रसिद्धिवश मत करो और अहंकार से मत करो। अहंकार से भी नहीं करना। अहंकार किस में आएगा? ख्याति लाभ पूजा, पूजा में आएगा। ये मुझे सम्मान मिले, इसे मान कषाय को ही सम्मान चाहिए पड़ता है ना, जहां मान होता है वहां सम्मान की जरूरत होती है। देखो कैसा है, जिसको समझ लोगे ना तो अभावी भी हो तो भवी बन जाओगे लेकिन अभावी को समझ भी नहीं आने वाला। ये मान छोड़ा जाता है, छोड़ना चाहिए, छोड़ना मेरा कर्तव्य है, ऐसी बुद्धि जगेगी ही नहीं उसके पास। कभी पूजा के भाव, कभी लाभ के, लोभ के भाव, एक रहेगा तो ये तीनों रहेंगे। मान चाहिए तो सम्मान भी चाहिए। कहाँ पर सम्मान चाहिए? वो नवग्रेविक में इन भौतिक वस्तुओं से उस सिंहासन बैठा हुआ सम्मान सत्कार मुझे चाहिए। तो भौतिक वस्तु का जो लोभ कषाय है वह लाभ है, उस लाभ के लिए वो कर रहा है। ख्याति लाभ और पूजा, उस लाभ के लिए वह कर रहा है। और वहां बैठ करके क्या करना चाहता है? ख्याति चाहता है। देखो मैं क्या हूं? अहमेंद्र हूं, अहमेंद्र हूं। अहमेंद्र पद को पाने की चाह, इस चाह में सब कुछ हवन करता है। वो परमार्थ को, सम्यक दर्शन को हवन कर देता है, ज्ञान को हवन में डाल देता है, राख राख हो जाता है परमार्थ। ये भव्य जीव के द्वारा भी हो सकता है। भव्य जीव यदि अति अज्ञान में है, कषाय तीव्र है, अनंतानुबंधी कषाय जिसका जोर मार रहा है, उसका सम्यक दर्शन टिकेगा नहीं, सम्यक ज्ञान रह नहीं पाएगा, सम्यक चारित्र नहीं रहेगा। इसी को भगवान ने कहा है शल्य, मायाशल्य, मिथ्याशल्य, निदानशल्य। मिथ्याशल्य क्यों कहा? क्योंकि यह साधना परमार्थ सिद्धि का कारण नहीं है, इसलिए मिथ्याशल्य है। मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए द्रव्य मिथ्यात्व भी है और भाव मिथ्यात्व भी है। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं भी हो, ऐसा हो सकता है यहाँ। हाँ, मुनि साक्षात, हाँ, दिगंबर वेश है वो, और वो वैसा हो करके बाह्य से कुछ नहीं करेगा। बाह्य से तो वह परमेष्टि की ही आराधना करता, ऐसा भी हो सकता है। कोई असमिमी वस्त्रधारी ज्योतिषी देव आदि भवनत्रिक देवों की पूजा में अटक जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह दिगंबर है, ये मेरे लिए उचित नहीं है कह करके उसको भी त्याग सकता है और पंच परमिष्टि के आराधना में लग सकता है वो। हाँ, 28 मूल गुणों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। ये 28 मूल गुण बाह्य में जो आचरण रूप रहते हैं ना, ये आचरण रूप है या नहीं इतना महत्वपूर्ण नहीं, भीतर में 28 मूल है या नहीं, और भीतर के 28 मूल गुण तब रहेंगे जब हमारा गुणस्थान छठा सप्तम गुणस्थान है और अनंतानुबंधी मिथ्या, तो सर्वघाती मतलब चारित्र के सर्वघाती, दर्श सम्यक्त्व के सर्वघाती कषायों को हमने दबा दिया है और उनकी क्षयोपशम अवस्था हमें प्रकट हो चुकी है। ऐसे भाव 28 मूल गुण को धारण करने वाले मुनि महाराज किसी दिन सामायिक करते हुए नहीं दिखाई देते क्रिया में, तो पहले गुणस्थान में नहीं आते, उनका गुणस्थान तो वही रहेगा, किसी दिन वो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, उनका गुणस्थान वहीं रहेगा, क्योंकि परमार्थ के प्रति रुचि है और उन दोषों के प्रति ग्रहण करूं ये बुद्धि नहीं है। दोष ग्रहण की बुद्धि न होने से गुणस्थान से पतित नहीं होंगे, और वो कभी कदाचित नहीं कर पाए तो वो दोष कहलाएगा अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। वो ख्याल में रखते हैं ये दोष अगर हुआ है तो इसकी आत्मनिंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, प्रायश्चित इत्यादि लेकर के मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करूं, ऐसा सतत जागृत रहते हैं। ये जागृति द्रव्यलिंग में संभव नहीं है, द्रव्यलिंग में क्रिया की अपेक्षा से जागृति होती है। हाँ,
ऐसे न करके हमारा मन इधर आप चिंतन में जा रहा है और हम द्रव्य पूजा नहीं किया,
हाँ,
तो चलेगा
चलेगा चलेगा, करो करो, बहुत अच्छा है वो। देखो ये द्रव्य तो द्रव्य है, 8 द्रव्य को भी आप द्रव्य समझ रहे हैं, यही तो धारणा मिटाना है अपने को। देखो ये धारणा मिटाओ, आप यदि उन 8 द्रव्यों का उपयोग नहीं भी किया किसी दिन तो इतना टेंशन मत लेना कि मेरे पास 8 द्रव्य हो करके भी मैं नहीं ले रहा हूँ, हो तो कर लो कोई बात नहीं, नहीं भी होता है तो ये टेंशन नहीं लेना कि मेरे पास द्रव्य नहीं है, आज हमने द्रव्य पूजन किया ही नहीं, ऐसा अफसोस अनुभव मत करो, क्योंकि द्रव्य पूजा का दूसरा रूप आचार्यों ने बताया भी है। किसकी पूजा करने जाओगे? भगवान की। तो भगवान शुद्ध द्रव्य है क्या? नहीं, शुद्ध द्रव्य की पूजा ही शुद्ध द्रव्य पूजा है, पंच परमेष्टि की पूजा ही द्रव्य पूजा है। हाँ, आता है, हाँ, वो चक्कर लगा के जाता ही है। आप लोगों को भी होता है? हाँ, होता है, होता है। अच्छा, हाँ? नहीं नहीं, ठीक है ना, प्रश्न तो प्रश्न है। देखो षड आवश्यक क्रिया, आपने इस षड आवश्यक क्रिया को इन बाहरी द्रव्यों से ही बांध के क्यों रखा है? वो भी बाहरी द्रव्य है भगवान, उनकी तो पूजा कर रहे हम, ये क्या द्रव्य पूजा नहीं? अच्छा, ये भी द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा इसको भी कहा है। भगवान के गुणों के प्रति जो चिंतन हो रहा है और उसमें जो उपादेय बुद्धि हो रही है और अपने आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए कषायों का जो परिहार भीतर हो रहा है, वो भाव पूजा है। अब इस भाव पूजा का चिंतन मनन करते करते भगवान की मान लो आप स्तुति भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भक्तामर पढ़ रहे हैं, दर्शनम देव देवस्य कोई भी स्तुति स्तोत्र पढ़ रहे हैं, सहस्रनाम पढ़ रहे हैं, या चिंतनात्मक ही आपका उनके गुणानुवाद चल रहा है तो भी वो स्तुति है। तो स्तुति मतलब पद्य ही पढ़ने से स्तुति होती ऐसा भी नहीं, भगवान के गुणों की प्रशंसा आप मन में कर रहे हैं ये क्या स्तुति नहीं। हाँ, तो जैसे हम यहाँ ये सोचते हैं कि स्तुति में जो भाव होते हैं उसका चिंतन कर रहे हो क्या स्तुति नहीं है, और ऐसा चिंतन करते करते क्या मस्तक नहीं झुकेगा भगवान के गुणों के प्रति, अवश्य झुकेगा, मस्तक झुक रहा है, और हाथ क्या नहीं जोड़ा जा रहा है, ये शरीर परद्रव्य क्या स्वद्रव्य, परद्रव्य, परद्रव्य का ग्रहण करके आत्मा ने इसका उपयोग किया, ऐसा किया, द्रव्य ले लिया कि नहीं हाथ में, काय को चावल आदि का विकल्प कर रहे हैं। हम भी द्रव्य पूजा रोज ऐसे ही करते हैं। अब आप लोग चावल इत्यादि इसलिए लेते हैं कि है इसलिए लेते हैं, और उसके पीछे आपने मंत्र जोड़ के रखा है कि हम ऐसा ही करेंगे, आपका विकल्प है ये, और उस विकल्प के पूर्ति के लिए उससे भी करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, देव लोग भी करते हैं। हाँ नहीं, परंपरा अच्छी परंपरा है, वो जो बुरी उसको ऐसा इसको उसमें इसको मत घटाओ, उसमें ये नहीं जाएगा, ये सम्यक्त वर्धक क्रिया है, ये भी सम्यक्त वर्धक है, ये भी सम्यक्त वर्धक है, और वो भी सम्यक्त वर्धक है, उसकी पूजा करना भी द्रव्य पूजा, इसके द्वारा इसको जुटा करके इसको इसको सबको जुटा करके करना भी द्रव्य पूजा है, और अंतरंग में जो आत्म विशुद्धि के उद्देश्य से कर रहे हैं वो सम्यक तो सहित परमार्थ बुद्धि है ना, वो सम्यक तो सहित है, और सम्यक तो सहित होने के कारण उसमें स्वपूजा भी हो रही है। पर पूजा करते समय करते 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 स्वपूजा भी हो जाती है, तब हो जाती है जब हमारे पास सम्यक दर्शन विद्यमान हो पर पूजा के साथ। हाँ, जिन दर्शन ही निज दर्शन के लिए है, और निज दर्शन को किनारा करके केवल जिन दर्शन करेंगे तो वहां पर निज दर्शन तो नहीं होगा, न भाव पूजा होगी और न निज पूजा होगी, केवल जिन पूजा होगी, द्रव्य पूजा होगी। तो द्रव्य पूजा दो तीन प्रकार की है, ये यदि ज्ञान हो तो आपको टेंशन आएगा नहीं, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, ऐसा ठहराव करके मत रखो कि ये करना ही द्रव्य पूजा और ये छूट गया तो आवश्यक क्रिया डूब गई, ऐसा क्यों विकल्प ले रहे हैं, नहीं, टेंशन नहीं लेना। जिन पूजा निज पूजा के लिए है, और जिन पूजा भी कब तक करते रहोगे, भगवान कहते हैं जिन पूजा मत करो, कब तक करते रहोगे, ये पूजा जब तक निज पूजा नहीं कर सकते, निज पूजा की कला हमें नहीं आती तब तक ये है, और ये कला आ गई और आप शुद्धोपयोग में चले गए तो शुद्धोपयोग अवस्था में तुमको इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उठो ऊपर। भगवान ने कहा जब तक तुम मेरी पूजा का त्याग नहीं करोगे केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। शुभोपयोगी को आज तक किसी को केवल ज्ञान हुआ है, क्योंकि शुभोपयोगी शुभोपयोगी है, वो जिनगुण अनुरागी है, जिनगुण अनुरागी है, और शुद्धोपयोगी निजगुण अनुरागी है, जो निजगुण अनुराग में रहता है उनको केवल ज्ञान होता है, वो भगवान बनते हैं, और जिनको जिनगुण अनुराग रहता है वो शुभोपयोग में रहता है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान कहते हैं मेरे को ही पकड़ कर बैठ गए ना, इसलिए तो तुमको अनंत काल से केवल ज्ञान नहीं हुआ। तुम अपने को पकड़ना नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, भगवान को और दुनिया को जानने के चक्कर में आ जाते खुद को छोड़कर। तो खुद को जो नहीं जानेगा, खुद में नहीं रहेगा, खुद को खुद की आराधना नहीं करेगा, वो कैसे खुदा बनेगा? खुदा यानी ईश्वर, परमात्मा, उनके अनेक नाम है। परमात्मा को चाहे खुदा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्मा कहो, हरि कहो, विष्णु कहो, उनको कुछ भी नाम रखो, गुणों से अगर वे अनंत चतुष्टय के धारी हैं तो उनके हजार नहीं करोड़ नाम हैं। पर लक्षण की अपेक्षा से परमात्मा होना, अनंत ज्ञान होना उनके पास, अनंत दर्शन गुण होना, अनंत आत्मा का बल होना और अनंत सुखी होना। परमात्मा दुनिया के चक्कर में नहीं रहता, दुनिया परमात्मा के चक्कर में आकर के परमात्मा बन सकती है। और जो परमात्मा दुनिया के चक्कर में आ जाए तो वो अभी परमात्मा अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, वो अभी सामान्य ही है। परिग्रह अवस्था में परमात्मा जीव बन नहीं सकता। क्योंकि परिग्रह पाप है, पाप की क्रिया है। धन, वस्त्र, आभूषण इत्यादि ये सब क्या है? स्त्री, अस्त्र, शस्त्र इत्यादि ये सब क्या है? परिग्रह नहीं क्या? परिग्रह है। परिग्रह पाप है क्या? पुण्य है, पाप है। इस पाप को त्यागने के बाद तो हमको परमात्मा बनने का रास्ता मिलता है, इस रास्ते का नाम है संयम। जिनके पास संयम ही नहीं है उनको परमात्मा नाम कैसे रखोगे? ऐसा परमात्मा नाम रखोगे तो आप स्वयं परमात्मा क्यों नहीं है? आपके पास भी ये सारी वस्तु है, गृहस्थ अवस्था में वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र सब परिग्रह हैं। ये जब तक रहते हैं तब तक परमात्मा बनने का रास्ता भी हमें उपलब्ध नहीं होता, वो साधन भी हमारे पास नहीं आ सकता। वो साधन आ जाए तो संयम आ जाए। किसके पास नहीं होते ये सभी परिग्रह, बाह्य परिग्रह? किसके पास नहीं रहते? संयमी के पास। उस संयमी का स्वरूप क्या है? विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यति। ये हैं परिग्रह से रहित, ये हैं परमार्थ के मार्ग पर आरूढ़ हैं, इनके पास साधन उपलब्ध है। साधन है तो साध्य तक पहुंच सकते हैं, साधन ही नहीं है तो साध्य तक कैसे जा सकते हैं? भगवान बनना साध्य है और उसका साधन है संयम, परिग्रह से मुक्त होना। परिग्रह से रहित होने पर देखो, पहले तो वह व्यक्ति गुरु अवस्था में आता है, गुरु अवस्था को प्राप्त करता है। भगवान बनता है क्या? नहीं। जिनके पास अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र कुछ भी नहीं है वो भगवान भी नहीं, वो पहले तो गुरु हैं। गुरु बनने के बाद भगवान बनता है, सुन रहे ना? गुरु बने बिना भगवान बना है क्या आज तक कोई? गुरु पद पाए बिना भगवान बने हो ऐसा एकाद नाम ले लो। संयम धारण करना ये गुरु अवस्था है, संयम धारण करना, परिग्रह त्यागना, निर्ग्रंथ बनना, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र सबको फेंक देना, दिगंबर बन जाना, इसी का नाम गुरु, इस अवस्था का नाम ही गुरु अवस्था। ये अवस्था धारण किए बिना आज तक कोई भगवान बन सका है क्या? आठों कर्मों को नाश किया है क्या? केवल ज्ञान आदि प्राप्त किया है क्या? नहीं। यदि नहीं है तो गुरु बने बिना भगवान नहीं बन सकते, ये सिद्धांत तो हो गया। इसलिए भगवान बनने से पूर्व हमको क्या बनना है? गुरु बनना है। और गुरु बनने के बाद द्रव्य पूजा है ही नहीं, जिस टेंशन में आप रात दिन रहते हैं कि हमारी आवश्यक क्रिया छूट गई। गुरु बनने के बाद द्रव्य पूजा, यानी आप जिस द्रव्य का टेंशन लेते हैं वैसी टेंशन गुरु अवस्था में नहीं है। गुरु अवस्था में ये टेंशन जरूर है, हमने भी आज पूजा नहीं की, षड आवश्यक क्रियाएं नहीं हुई, स्तुति नहीं हुआ। दिगंबर मुनि दिगंबर बनने के बाद उनका काम क्या है? दृष्टि बाहर जाए तो भगवान की ओर जाता है और लौट जाए तो अंतरंग में आता है। जब जब बाहर जाता है द्रव्य पूजन करके लौटता है, जब जब अंतरंग में आ जाए तो भाव पूजन कर लेता है, स्व पूजा कर लेता है, स्व आराधना कर लेता है। हाँ बिल्कुल, विषकुंभ भी बताया है, यानी शुद्धोपयोग में रहने वाले मुनि महाराज के लिए शुभोपयोग विष है। काय को आ रहे हो? विष रहित जल पी रहे हैं तो विष मिश्रित जल पीने नीचे क्यों आ रहे हैं? इसलिए उनके लिए तो इसको विष कहा। हाँ मतलब शुभोपयोग की क्रिया है ना, प्रतिक्रमण करो, देव दर्शन करो, कोई भी प्रवृत्त्यात्मक जो भी चेष्टा है दिन भर की, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति मात्र शुभोपयोग है। इससे कुछ भी करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित ले लो और कुछ भी करो, प्रवृत्ति यदि है तो शुभोपयोग है। शुभोपयोग शुद्धोपयोगी के लिए विषकुंभ है और शुभोपयोगी के लिए शुद्धोपयोग अमृत कुंभ है। शुभोपयोगी के लिए शुद्धोपयोग अमृत कुंभ है और देखो अशुभोपयोगी के लिए शुभोपयोग अमृत कुंभ है। जिनको सम्यक दर्शन आदि हुआ नहीं, ख्याति लाभ पूजा में अटका है, उनके लिए अशुभोपयोग विषकुंभ है और शुभोपयोग अमृत कुंभ है। अलग अलग कुंभ है और ये अलग अलग कुंभ है या नहीं ये पता ही नहीं था ना, इसी को पता लगाने के लिए हम ये कुंभ मेला में आए हैं। ये कुंभ मेला क्यों है यहाँ? यही बात समझने के लिए हम कुंभ मेला जोड़ रहे हैं। साल भी एक बार हमारा कुंभ मेला होता है, प्रतिमाधारियों का कुंभ मेला। हाँ ये मेला अमृत कुंभ है और मेले का नाम कुंभ मेला, और इसमें जो कुंभ मिलता है अमृत कुंभ मिलता है।
महाराज जी एक प्रश्न था कि ये धर्म करते करते खुद ब खुद ख्याति आ जाती है।
हाँ।
और वो व्यवहार में उसी में उलझा जाता है।
हाँ।
तो उसको कैसे बचाया जाए, खुद कैसे बच सकता है उसको?
देखो आत्म तत्व का ज्ञान चिंतन मनन जिसको ज़्यादा होता है वो आसानी से बच जाता है। आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, आत्मा की तरफ ख्याल भी नहीं देंगे, चिंतन के लिए समय भी नहीं देंगे और प्रश्न केवल ये बना रहेगा कि कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, ऐसा बचा नहीं जाएगा। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्म तत्व को उपलब्ध करना है, उसके प्रति जितनी चिंता हो आपको, वो चिंता ही आपको इस प्रश्न का उत्तर देगा और हल कर देगा। तो अपन को क्या करना चाहिए? आत्म तत्व की आराधना की ओर ज़्यादा लक्ष्य देना चाहिए। संसार का कार्य करो, उसको छोड़ना नहीं पड़ता इस लक्ष्य को बनाने के बाद। चलते फिरते उठते बैठते कोई भी सांसारिक कार्य करते समय आत्मा की ओर भी ध्यान रहना चाहिए। उपाधेय तत्व तो आत्म तत्व ही है, आत्म कल्याण ही उपाधेय भूत विषय है, वही करने योग्य है। संसार में करने योग्य श्रेष्ठ अगर कोई क्रिया है और आवश्यक यदि कोई क्रिया है तो आत्म तत्व का, आत्मा का ही काम है। आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का आचरण, ये करने के प्रति जो रुचि लगाव है, वो लगाव ही आपको उत्तर देगा और आचरण में भी ला देगा। वो लगाव चाहिए, हमको तो टाइम ही नहीं मिला। अरे टाइम मिलता नहीं है, हर टाइम मौजूद है, उसका सदुपयोग करना है। क्या करना है? मैं जो कर रहा हूँ ये संसार की क्रियाएं हैं, ये संसार की क्रियाएं आवश्यक नहीं हैं, ये अनावश्यक हैं। आत्मक्रिया आवश्यक है, आत्मक्रिया आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। ऐसी रुचि आत्म तत्व के प्रति जब बनेगी तो उसकी चिंता उत्पन्न होगी और इस तरफ से रुचि हटेगी, इस तरफ से रुचि जुड़ेगी और ये क्रियाएं ऑटोमेटिक गौण होने लग जाएंगे और इधर से हम जुड़ने लग जाएंगे। नहीं भी जुड़ते हैं तो अंतरंग रुचि आपको उससे बचाएगा। संसार की कोई भी क्रिया हो, कोई भी व्यवसाय हो, खेती करते हो, व्यवसाय करते हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई ही उपाधि आपने बाहर से ले रखा है, ये सब संसार में भ्रमण के कारण है ना। इससे क्या कल्याण होने वाला है? ये शरीर तक सीमित है, शादी शांत भी है और शरीर सुख के लिए तो कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? ये सब करके ये पगार आ गया, ये धन मिल गया, इस संपत्ति से शरीर सुख दोगे, एंड में अंत समय में मरण होगा, बस इतना ही हुआ। और क्या होने, इससे ज्यादा क्या होने वाला है? शरीर भी नश्वर और ये जड़ वस्तु भी नश्वर। हम जड़ वस्तु के पीछे पड़े हैं चेतन होकर। यही तत्व समझ में नहीं आया जीव को, मैं चेतन तत्व होकर जड़ तत्व के पीछे पड़ा हूं, कितना अज्ञानी। और अज्ञानी को जड़ भी कहा है, जो केवल जड़ के पीछे पड़ता है वो अज्ञान से पड़ता है और उसका उसकी जो अज्ञानता है वो जड़ात्मा है। हाँ हाँ, जड़ के निमित्त से होते हैं इसलिए ये भी प्रभाव हैं, चेतन जरूर हैं, आत्मा की ही वैभाविक पर्याय जरूर हैं, चेतन है, इनकी अनुभूति भी होती है, इसलिए इनको चेतन भी कहा है कथनचित, परंतु अशुद्ध चेतना है। आत्मा में ही होते हैं इसलिए अशुद्ध चेतना है, इनके अनुभूति होती है इसलिए चेतना है। शरीर की अनुभूति नहीं होती, जड़ वस्तु है ये, पर रागादि शरीर के प्रति जो रागादि भाव हो रहे हैं उसकी तो अनुभूति हो रही है। मैं इसके प्रति कितने आसक्त हूँ, पर शरीर की क्या अनुभूति कैसे करोगे, क्या अनुभूति करोगे? बस शरीर धारण किया है, बस इससे मैं सुखी हूँ, और वह सुख भी आपको अंतरंग में प्रभावों का सुख मिल रहा है, शरीर उसमें निमित्त मात्र है, पर पदार्थ ही निमित्त है। इसके निमित्त से जो आपको निरोगता का, स्वास्थ्य का जो सुख मिल रहा है, वह सुख भी सादी शांत है, इसलिए प्रभाव है, वैभाविक भाव है, वैभाविक सुख है, वो स्वास्थ्य भी वैभाविक सुख है, इसको सादी शांत समझना है। शरीर का स्वास्थ्य सादी शांत है, सादी अनंत नहीं है, इंद्रिय जनित है, पराश्रित है, पराश्रय से उत्पन्न हुआ सुख है ये, इसलिए इसमें नहीं अटकना। मेरा शरीर तो वो ऐसा रहता है, वैसा रहता है, शरीर को लेकर के चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। जीव यहीं अटकता है, अंत में जाकर के शरीर में अटकता है जीव, सब कुछ तो छोड़ देता है, किसी से मोह नहीं रहता, पर शरीर के ऊपर कष्ट आ गया तो घबराने लगता है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है। तो शरीर को होता हुआ देखकर मुझे हो रहा है, ये अगर आप ऐसे भाव करते हैं, ऐसा विचार करते हैं, तो अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ है, भेद विज्ञान नहीं हुआ। यहां पर ये चिंतन करना चाहिए कि ये तो शरीर को हो रहा है, मैं मुझे कष्ट जरूर है, पर ये शरीर आश्रित कष्ट है, पराश्रय से उत्पन्न होने वाला कष्ट है, ये पर है, मैं स्व स्व हूं, इसके निमित्त से जो मुझे कष्ट हो रहा है वो भी साधी शांत है, आज है कल जाएगा, विश्वास रखो। कष्ट होता है कर्म का उदय और शरीर, दोनों ही निमित्त हैं, और हम आत्मा से अस्वस्थ हो जाते हैं टेंशन में आकर के, ये मानसिक पीड़ा, मानसिक व्यथा, ये दो के कारण से हो रहा है, शरीर के निमित्त से और कर्म के निमित्त से। अब इसमें क्या चिंतन करें हम इससे छुटकारा पाने के लिए, तो ऐसा चिंतन करें शरीर पर है, कर्म भी पर है, इससे जो मुझे कष्ट आ पड़ा है ये सादी शांत है, आज है कल के दिन नहीं रहेगा, जिंदगी भर भी रहता है तो अगले भव में तो रहेगा नहीं ये जब तक शरीर साथ में है तभी तक होगा, केवल कर्म साथ रह गया और शरीर यहीं छूट गया, और विग्रह गति में भी ये कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों निमित्त चाहिए। तो चिंतन क्या करना, चिंतन ऐसा करना, शरीर पर अशुभ कर्म का उदय और शरीर मौजूद है इसलिए कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा चिंतन करो, शरीर मैं नहीं हूँ, कर्म भी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर जो कष्ट आया है वास्तव में मुझे ही आया है, शरीर इसका अनुभव नहीं करता दुख सुख का, कर्म भी उसका अनुभव नहीं करता, वो कष्ट देने में निमित्त रहता है पर कष्ट की अनुभूति आत्मा को होती है, और ये कष्ट जो है ये सादी अनंत नहीं है, ऐसा सोचो ना, ऑटोमेटिक मोह छूट जाएगा। और इंतजार करो समता रख करके, समता रखो, समता रखो, मन को बिगाड़ो नहीं, आर्त रौद्र ध्यान करोगे तो इस कष्ट के भीतर जो भाव होते हैं हर्ष विषाद के, अशांति के, पहले के जो कर्म फल दे रहे हैं सत्ता में से आकर के, वो चार्ज होंगे वो, और आने वाले चार्ज होकर, फुल चार्ज होकर आकर के बंधेंगे, उसका अनुभाग बंद ज्यादा रहेगा, उसका स्थिति बंद ज्यादा रहेगा, ये रहेगा। तो ये अच्छा है क्या, अभी भी दुखी और बाद में भी दुखी, ई भव में भी दुखी और पर भव में भी दुखी, ऐसा रहना हो तो खूब चिंता करो, टेंशन ले लो, शरीर शरीर शरीर, अयो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मुझे बहुत कष्ट आ पड़ा है, समता तो रखो, समता अमृत है, ये समता रूपी अमृत से आए हुए कर्म भी डिस्चार्ज होंगे, आकर बंधने वाले कर्म भी डिस्चार्ज होकर के ना के बराबर स्थिति अनुभाग को लेकर के बंधेंगे, तो ऐसा होगा तो जो कष्ट आ पड़ा है थोड़ा भी हम समता रखते हैं तो सत्तागत कर्म डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज हो करके उदय में आएंगे तो ज्यादा फल नहीं दे सकेंगे, डिस्चार्ज क्या क्या हुआ है, अनुभाग भी डिस्चार्ज हुआ है और स्थिति भी डिस्चार्ज है, तो आपकी वेदना तुरंत कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कष्ट तुरंत कम होता जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो फल मिल रहा है वो पूर्व में बंधे हुए कर्मों का मिल रहा है। हाँ, हमने ही बांधा है, और कब बांधा है, ऐसे ही टेंशन काल में ही बांधा है, हाय हाय करते समय ही बंधे हैं ये, हाँ स्वस्थ अवस्था में नहीं बंधते कभी ये कर्म, ऐसे हाय हाय प्रतिकूल अवस्था में ही बंधे हैं, और प्रतिकूल अवस्था में जब हमने समता न रख करके विषम भावों में हम रहे तभी तो बंधे हैं। हाय हाय करते समय आर्त रौद्र ध्यान में बंधते हैं, टेंशन के काल में बंधते हैं, नहीं। अगर समझदार है, ज्ञानी है जीव, आत्म तत्व को, जड़ तत्व को, कर्म के फल को, कर्म के अनुभव को सब कुछ जानता है, समझता है, विवेक बुद्धि वाला है, तो चिंतनशील नियम से होगा वो। और ये सोचेगा चिंतनशील होकर के, मैं समता रखूं तो सारी की सारी समस्याओं का हल का एक ही उत्तर है, एक ही मार्ग है, समता रखो, टेंशन मुक्त हो जाऊंगा ना। ये रोग 10 दिन में ठीक होने वाला 1 घंटे में ठीक हो सकता है। अनुभाग को डिस्चार्ज कर दो, आपको वेदना कम हो जाएगी। समता के माध्यम से, विशुद्धि के माध्यम से ही अनुभाग को घटाना संभव है। और जिनका अनुभाग घट गया, स्थिति घट गई, वो कर्म उदय में आकर के जब फल देंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये जादू हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी दर्द थी और 1 घंटे के बाद ही एकाएक ही दर्द गायब। ये चमत्कार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये उदय काल में समता रखने के लिए दम चाहिए, एकदम चाहिए, और धीरे धीरे भी नहीं दम एकदम चाहिए। ऐसा पाप कर्म का उदय आते ही और कष्ट प्रारंभ होते ही एकदम दम जुटा लो और दम के साथ समता भाव में स्थिर हो जाओ। किसी का संपर्क मत करो उस समय। देखो जब कष्ट में रहते हैं ना, जितना आप एकांत में रहेंगे उतनी जल्दी उसका अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। लोग और हमारे चार्जिंग में वो भी निमित्त बनते हैं। वो क्या कहते हैं सामने बैठ करके, आपको ऐसा हुआ तो जरा आत्मा से कमजोर हो, जिनकी पात्रता इतनी नहीं है, सुन करके भी उसको झेलने की पात्रता नहीं है, तो कहेगा हाँ ऐसा ही हुआ, क्या करना। आत्मबल और घटेगा उसमें और चिंता और बढ़ेगी। भा कट आयता अंतर और छोलो आयता हम आता स्कोरता। इसलिए ऐसे टाइम में क्या करना, एकांत ढूंढना चाहिए। कष्ट आने पर एकांत, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, ऐसे शांत हो जाओ, ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ कि कल के दिन ही ठीक हो जाए। समता धारण कर लो, प्रतिकूल अवस्था आई है ना, झेल लो उसको, भूल जाओ उसको, चिंतन में डूब जाओ, आत्मा के चिंतन में डूब जाओ, वेदना को देखो, जानो, बिगड़ो नहीं, होने दो वेदना, उसको देखना, जानना, प्रयास करना, औषधि लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन ज्ञाता दृष्टा बन करके सब उपचार करो। हर्ष विषाद करते हुए उपचार नहीं करना, ज्ञाता दृष्टा बन करके उपचार करते जाओ, उपचार करते जाओ, कुछ ही दिन में जल्दी रिजल्ट आएगा, आएगा निश्चित, ऑटोमेटिक। और विश्वास किस पर रखना? ऐसा विश्वास रखना, ऐसा कभी विचार नहीं करना कि ये तो आया है तो ये तो मुझे ले ही जाएगा, ये तो मेरा मरण ही इसमें होने वाला है, ऐसा मरण होगा इस पर विश्वास ही नहीं रखना। मैं बचूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग करना, मैं बचूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास समता है। और ये कर्म जो है इसी के कारण से ये संकट आ पड़ा है, ये संकट शाश्वत नहीं, सादी शांत है, चांस है, चमत्कार हो सकता है। मेरी समता के भीतर ये चमत्कार है कि उसका डिस्चार्ज करे और वो विघ्न डालने से वो दूर हो जाए, हो सकता है। ये स्वयं को करना पड़ता है, ऐसा एकाएक कुछ हो जाए तो स्वयं को ही धैर्य करना पड़ता है, स्वयं को ही चल पड़ना पड़ता है। औषधि उपचार करना, वह भी टेंशन के साथ नहीं, होता है होने दो, जितना औषधि से होता है होने दो, वास्तविक उपचार तो भीतर है। भीतर क्या है? समता रखना, और उस समता के माध्यम से जो कर्म हमारे लिए वेदना का कारण बन रहा है उसको डिस्चार्ज करना, अपकर्षण करना, ये काम करेंगे तो समाधि मरण आने तक बीच में भी कोई भी संकट आ जाए तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है, हिलाने वाला कर्म भी असमर्थ हिलाने में और कोई लोग भी आपको हिला नहीं सकते। लोगों के बीच में जाके बैठोगे, मैं क्या करूं पूछते हुए बैठोगे, वो और ज़्यादा ज़्यादा आपको उल्टी सीधी दवाई भी दे करके ये खाओ वो खाओ खाओ हाँ सभी डॉक्टर बन जाते हैं, जो डॉक्टर नहीं है उनके पास भी सबके पास सर्टिफिकेट आ जाता है उस वक्त सभी उपचार करने लगते हैं, हमको ये अनुभव है बहुत अनुभव है ये जिंदगी में पहली बार अनुभव, लेकिन हम खुद को रास्ता निकालना पड़ा, कैसा रहना, कैसा वातावरण बनाना, लोगों को किसको लेना किसको नहीं लेना, किसको पास में आने देना किसको नहीं आने देना, क्योंकि आपके पास इतने लोग नहीं आते जितने लोग हमारे पास आते हैं, छूट मिल गई ना तो वहाँ पर तो मेला चारों ओर। हाँ पहली बात तो ये प्रचार करना चाहिए, मेरा सब कुछ ठीक है स्वस्थ हूँ, तो लोग भी कहते हैं महाराज ने कहा है तो स्वस्थ होंगे ही तो भीड़ कम लगेगी, अब भीड़ लग जाएगी ना तो उन भीड़ को देख करके हमारा चिंतन उधर जाएगा, हमारा उपयोग उधर लगेगा, और फिर हम जो चिंतन करना चाहते हैं जिसमें रहना चाहते हैं उसके लिए अवसर ही नहीं मिल पाएगा, ना बोलना न चाहते हुए भी वो क्वेश्चन पूछता है महाराज आज आहार ठीक हुआ औषधि वगैरह मिल गई, अब हाँ ना कहने के लिए भी समय देना पड़ेगा, वो करे क्या ये करे अपना करे समस्या हो जाती है, इसलिए समाधि के काल में कहो या रोग आदि बीमारी होने के बाद कहो सामान्य लोगों को पास में लेना ही नहीं चाहिए, जब ऑपरेशन के लिए थिएटर में डॉक्टर मरीज को ले लेते हैं दुनिया को देखने के लिए खड़े कर देते हैं, परमिशन है वहाँ, तो वहाँ पर ये नियम है तो फिर यहाँ पर कैसे होंगे धर्म के क्षेत्र में, समाधि मरण के काल में कोई रोग हो गया संकट आ गया उस काल में। हाँ अपने अशुभ कर्म के निमित्त से शारीरिक संबंधी जो भी रोग आदि आते हैं उस समय में प्रतिकूल परिस्थिति बनती है स्वयं के तरफ से, स्वयं के शरीर के तरफ से, इस प्रतिकूल परिस्थिति को प्रतिकूल समझकर समता में जाने का प्रयास ज्ञानी जीव करता है, तत्व ज्ञानी आत्म तत्व को ही देखता है, शरीर तत्व को कर्म तत्व को चिंतन करता है और आत्म तत्व को घच पकड़ता है, आत्म तत्व उनको क्या लगता है ये शादी अनंत है मैं इसको पकड़ लूँ और रोग शादी शांत है इसकी चिंता छोड़ूं, ये अभी अभी कल के दिन भी ठीक हो सकता है या जीवन भर भी रह सकता है, वो भी शादी शांत है ये भी शादी शांत है, क्या लेन देना इससे, एक न एक दिन इसको छोड़ना ही है, शरीर है अभी छूटे कल छूटे जीवन के अंत समय में छूटे, छूटना ही तो है, इसके साथ इतना अटैचमेंट इतना मोह क्यों करूं, मैं शाश्वत हूं, शाश्वत वस्तु के प्रति मोह करूं क्या नश्वर पर द्रव्य के प्रति मोह करूं, ये तत्व चिंतन करता है, इसी को आत्म तत्व कहते हैं, आत्म तत्व का चिंतन करने से ही हम भगवान बन सकते हैं, यही प्रयोजनभूत तत्व है, दुनिया में प्रयोजनभूत अगर कोई तत्व है तो ये आत्म तत्व ही प्रयोजन है, संसार का कुछ भी काम करो काम में आने वाला नहीं है, यहीं पड़ा रहेगा, खाली मुट्ठी बांध के आए थे हाथ पसारे जाएंगे और जिसको छोड़ के जा रहे हैं, जिसके लिए किया था वह भी छूट गया, वो भी साथ में नहीं आया। शरीर धन काय के लिए कमाया था, शरीर के लिए, शरीर को सुखमय रखने के लिए। धन को ले जा सकते हो क्या? नहीं। शरीर को ले जा सकते हो क्या? नहीं। शरीर के लिए धन कमाया वो भी नहीं आया, और जिसके लिए कमाया था, इतना सारा विकल्प किया था, उसको भी ले जाए कम से कम अगले भव में, वो भी नहीं आ रहा है। दोनों ही नहीं आते हैं तो किसकी रक्षा करो उस समय? खुद की रक्षा करो ना, जो शाश्वत चेतन तत्व है, अनादिकाल से है, अनादिकाल से था, है और भविष्य में भी ये रहने वाला है, वही तो खुद है, वही तो खुद खुदा बन सकता है। उस ओर चिंतन करो ना, वही मैं हूं और मुझे कुछ होता नहीं है। मैं अकेला अगर बच जाऊं ना, मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं अखंड चेतन तत्व हूं, मैं जल नहीं सकता, मैं पर निमित्त से दुखी नहीं हो सकता, शुद्ध निश्चय से शुद्ध हूं। तो उस समय कर्म मुझे क्या कर सकते हैं? निर्जरित कर्म फल नहीं देते, छोड़ा हुआ शरीर मुझे फल नहीं देगा, रोगी नहीं बना सकेगा। रोग किसको हुआ था? मुझे हुआ था कि शरीर को? शरीर को। तो पर को हुआ था, पर को रोग हुआ, और मैं इतना चिंतित हो, इतनी ज़्यादा चिंतित होने की मुझे क्या जरूरत है? पर को हुआ है, पड़ोसी को हुआ है, पड़ोसी को हुआ है तो दया करना आवश्यक है, थोड़ा बहुत दया कर लो, औषधि दे दो उसको, ठीक होना हो तो हो जाओ, नहीं तो देखो हाँ, अपने तरफ से तो हम उपचार कर रहे हैं, समझाओ उस शरीर को, अपने तरफ से तो हम प्रयास कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाते हो तो मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा। आपके लिए तो हम उपचार अपने विवेक बुद्धि से कर रहे हैं, दया बुद्धि से कर रहे हैं, हो जाओ ठीक हो जाओ, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, सद्बुद्धि से ठीक कर लो उसको, करना बुद्धि से, पड़ोसी समझ करके। मैं किसी पड़ोसी का ही, पड़ोसी तो है ही, वास्तव में पड़ोसी है, पड़ोसी का ही उपचार कर रहा हूं ऐसा कह करके उपचार करो। अज्ञानता के कारण से जो कर्म बंद होते हैं, उन कर्मों की निर्जरा कैसी होती है? ऐसी होती है समता भाव रखने से। समता भाव ज्ञान भाव, और विषमता भाव अज्ञान भाव। जब जब हम विषमता में रहते हैं, हर्ष विषाद टेंशन, तब अज्ञानी है हमारी आत्मा। और जब जब इस अज्ञानता को समझ करके समता में आ जाते हैं, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में स्वस्थ रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो ज्ञान अवस्था है। ज्ञान अवस्था में किए हुए कर्मों के, पूर्व कर्मों की भी निर्जरा होती है और आने वाले कर्मों का संवर होता है। कितना बड़ा लाभ है। पहले के तो खाली हो गए, और नए जो आना चाहिए था, कष्ट देने वाले कर्म आने वाले थे, वो नहीं आ पाए। शुभ कर्म आएंगे, वो तो हमको अच्छा ही करेंगे ना। जो अशुभ कर्म हैं, कष्ट देने वाले हैं, वो तो आएंगे नहीं। वो संवर, उनका संवर तो होगा ही होगा। पुण्य कर्म तो आएंगे, समता भाव में भी आएंगे और विषमता में तो नहीं आएंगे, शुभ भाव में तो आएंगे। तो ऐसा तत्व चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, ये परम आवश्यक है, ये करना चाहिए। इसको भूलना नहीं, ये जो बताया ना, इसको ध्यान में रखना है, ये सतत ध्यान में रखना है। एक बात और, जीवन जीने की कला, अंतिम कला मैं बताता हूँ, सुन लो। आप यहाँ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है, प्रसन्न मन है, प्रसन्न आत्मा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ये सतत रख सकते हैं कि नहीं? अपन रखना चाहिए तो रख सकते हैं। उसका भी कोई उपाय है क्या? नहीं, रखने का कोई है तो क्या है वो, उसका चिंतन को अभी तक आज तक आपने किया है नहीं किया है? नहीं किया है, इसलिए ये जो प्रसन्नता है, ये जो टेंशन मुक्त अवस्था है, ये हमारे जीवन में नहीं आ रही है। क्या उपाय है उसका, क्या चिंतन किया बोलो? हाँ? नहीं होना चाहिए उत्तर मालूम यदि है भी, लोग प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आया वो, क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रैक्टिकल के काल में हम भूल जाते हैं। प्रश्न करे तो उसका उत्तर मालूम रहता, उत्तर दे करके पार हो जाते हैं, फिर वो क्या करते रहते, वही करते रहते हैं जो करना है। विवेक नहीं, यानी जागृति नहीं रहती। जागरण अवस्था आवश्यक है। आप ये समझ के चलो, हम यही बता रहे हैं, अपने हम आत्मा हैं, आत्मा के पास ज्ञानोपयोग है, इस ज्ञानोपयोग का आपको दुरुपयोग करना है क्या सदुपयोग करना है? पहला संकल्प ले लो, सदुपयोग करने का संकल्प लेओगे? ले संकल्प, सदुपयोग ही हम करेंगे। इसी ज्ञानोपयोग में जब अशुभ कर्मों का उदय होता है तो प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, उसी समय हमारी परीक्षा है। इधर से मुड़कर उधर कदम रखा कि आ गई वो प्रतिकूल परिस्थिति और मन बिगड़ गया, विचलित हो गया और एकदम टेंशन में आ गए, ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ पर मालूम है, सुन रहे हैं, लेकिन उधर जाते ही हो जाता है वो। तो ऐसा न होने के लिए क्या करना? तो जागृति सतत आवश्यक है। ये संकल्प लेना कि हम हर समय प्रतिकूल परिस्थिति को सामने देखते ही उसमें मन को नहीं बिगाड़ेंगे, उस समय तत्काल जागृत रहेंगे और उसको आने नहीं देंगे, मन में अप्रसन्न होने नहीं देंगे, मन को अप्रसन्न होने नहीं देंगे। ये संकल्प लो, अप्रसन्न कब होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। वहां पर कैसे रहना है? जागृत रहना है और अपने पूर्व से जो चली आ रही प्रसन्नता है उसको कंटिन्यू करना है, खंडित होने नहीं देना है। तो जागृत अवस्था से ही ये संभव है। तो सदा जागरण, सदा जागरण, सदा जागरण। जागरण अवस्था है तो आप वस्तु को देखेंगे, जानेंगे, लेकिन बिगड़ेंगे नहीं। देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन आप बिगड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप जागृत आत्मा हैं। आत्मा बिगड़ती है तो कौन सी आत्मा बिगड़ती है? अजागृत आत्मा बिगड़ती है। और जागृत आत्मा बिगड़ती है क्या? नहीं। और दुनिया के व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना, बैठे बैठे उनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, इधर का क्या हुआ, उधर का क्या हुआ, पेपर पढ़ लो, जरा उधर का भी पता लगाओ, इधर का भी पता लगाओ, वहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल, इस चक्कर में अनर्थ दंड के कार्य होते हैं। क्या मतलब है? विकता है ये? नहीं नहीं, अनर्थ दंड व्रत है ना, उसके अंदर आता है ये। हाँ नहीं, व्यर्थ का परिचय लेना, वहां क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फालतू काम कितना करता है जीव, ये अनर्थ दंड की कोटि में आता है। पता लगा कि क्या करोगे, क्या लाभ है, क्या उसके लिए, क्या मोक्ष मिल रहा है, कि आपको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही उसमें, दूसरे का पता लगा करके क्या करना है, ऐसा चिंतन करो ना। नहीं, वहां अच्छा भी हो या बुरा भी हो, उनसे ज्यादा इनको चिंता है वहां क्या हो रहा है। वही तो, खुद का पता नहीं है, दुनिया को पता लगाने भाग रहा है। पढ़ पढ़ भाई पंडित, ज्ञान हुआ अपार, और खुद की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। खुद की खबर नहीं। पढ़ पढ़ भये पंडित, ज्ञान हुआ अपार। पढ़ पढ़ भये पंडित, ज्ञान हुआ अपार। खुद की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। स्वयं की चिंता ही नहीं है, ज्ञान है, सब कुछ है, ऐसा करना बुरा है, ऐसा करना अच्छा है, इससे बचना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, सब पता है। लेकिन जागरण अवस्था का संकल्प न होने से ये सब कुछ होता है। हमने संकल्प कभी किया ही नहीं ऐसा, और संकल्प नहीं किया है इसलिए होता रहता है। हो गया, लिख दिया, काय के लिए लिख दिया? दूसरे को सुनाना है। खुद के लिए लिखो, खुद के लिए, नहीं तो इस प्रसन्नता के साथ नहीं लिखना। महाराज जी ने एक बहुत अच्छी दोहा बताई थी, आपको सुनाता हूँ, सुन लो। सुनाने की जिज्ञासा से लिख रहे, खुद के लिए सुनाओ। जो कुछ भी काम करते स्वयं के उद्देश्य करो, पर के उद्देश्य कुछ भी नहीं करना। पर के उद्देश्य करना ही ख्याति लाभ पूजा है। हाँ, फिर वहीं आ जाते हैं लौट कर, जहाँ अनादिकाल से थे वो उसी जगह आ जाते हैं। समय हो गया 9:15। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।